फ्लैशबैक। आरवी के जाने के कुछ देर तक भी जब वो नहीं आई तो रश्मि उसको ढूंढने चली गई, क्योंकि उसको अजीब सा फील हो रहा था। फिर विहान की वजह से वो कभी आरवी को अकेला नहीं छोड़ती थी, और आज वो अकेले चली गई थी, इसलिए उसको थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। जब आरवी कुछ देर तक वापस नहीं आई तो वो भी चली गई। नीचे वाले वॉशरूम में उसको आरवी नहीं मिली। जो लड़कियां थीं उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि आरवी वहां नहीं आई। रश्मि को कुछ खटका, बाहर आई तो अनायास ही नज़र वहां साइड में उल्टे रखे बोर्ड पर चली गई। उसने उठाकर देखा तो उसका दिमाग ठनका और कुछ सोचकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो ऊपर वाले फ्लोर की तरफ दौड़ गई और सीधे बाथरूम की तरफ भागी। उस वक्त ऑडिटोरियम में गाने बंद हो गए थे, तो कुछ आगे बढ़ते ही उसके कानों में आरवी के चीखने की आवाज़ पड़ी। ये तब की बात है जब विहान से बचने के चक्कर में आरवी का सर दीवार से लग गया था और उसके मुंह से चीख निकल गई। हालांकि खून नहीं निकला था, पर वो बेहोश हो गई थी और उस जगह फूल गया था, लाल भी हो गया था। उसकी चीख सुनकर रश्मि के कदम ठिठक गए। वो ये आवाज़ पहचानने में गलती कैसे कर सकती थी? उसने दौड़ लगा दी। बाथरूम के बगल वाले कमरे के दरवाजे पर आकर उसके कदम रुके। आवाज़ यहीं से आई थी। उसने ज़ोर से दरवाज़ा पीटते हुए कहा, आरवी तू अंदर है? कौन है अंदर? दरवाज़ा खोलो। वो कुछ देर तक दरवाज़ा पीटती रही, चिल्लाती रही, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। रश्मि के चेहरे पर अब डर नज़र आने लगा था। तभी एक लड़का वहां से गुजरा। उसने रश्मि को परेशानी से दरवाज़ा पीटते देखा तो उसके पास आ गया। रश्मि, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतनी परेशान क्यों हो और चिल्लाकर दरवाज़ा क्यों पीट रही हो? वो उन्हीं की क्लास में पढ़ता था। रश्मि की उसे ठीक ठाक बात हो जाती थी। उसका सवाल सुनकर रश्मि ने परेशान निगाहों से उसे देखते हुए कहा, मुझे अंदर से आरवी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो अंदर है पर दरवाज़ा नहीं खोल रही है। ज़रूर वो किसी मुसीबत में है और मैं अंदर नहीं जा पा रही। तो बैक साइड चलते हैं ना, अगर विंडो खुली होगी तो अंदर घुस जाएंगे, वरना देख लेंगे कि सच में आरवी अंदर है या नहीं। लड़के ने तुरंत ही दिमाग दौड़ाया और उसको एक रास्ता बता दिया जो टेंशन की वजह से रश्मि के दिमाग से निकल गया था। उनके कॉलेज में सभी कमरों में बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हुई थीं जो बैकसाइड खुलती थीं। वो खिड़की इतनी बड़ी थी कि कोई भी आसानी से बाहर से अंदर और अंदर से बाहर आ जा सकता था। अक्सर जब क्लास बोरिंग होती तो बच्चे खामोशी से खिड़की से बाहर निकल जाते थे। रश्मि उसकी बात सुनते ही सीढ़ियों की तरफ भाग गई। वहां से पीछे जाने का रास्ता था। वो लड़का भी उसके साथ चला गया। दोनों उस कमरे के बाहर पहुंचे तो खिड़की खुली थी। दोनों बिना वक्त गवाए अंदर घुस गए। रश्मि की निगाहें जैसे ही सामने पड़ी उसके कदम ठिठक गए। आरवी स्टेज पर बेहोश पड़ी थी और विहान उसके ऊपर था, उसको चूम रहा था। ये देखते रश्मि की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। वो गुस्से में उसके तरफ पड़ी और उसको खींचकर आरवी से अलग करते हुए दूसरी तरफ पटक दिया और खुद आरवी के पास बैठ गई। उसने उसके सर को अपनी गोद में रख लिया और उसके गाल थपथपाते हुए उसको आंखें खोलने को कहने लगी। विहान अचानक ऐसा कुछ होने के लिए तैयार नहीं था। वो जाकर दूसरी तरफ गिरा। कुछ पल बाद उसको एहसास हुआ कि आखिर हुआ क्या, तो वो उठकर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, पर बीच में वो लड़का आ गया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। कुछ देर तक रश्मि आरवी को होश में लाने की कोशिश करती रही, पर जब उसने आंखें नहीं खोली तो रश्मि का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने आरवी को वापस जमीन पर लिटाया और विहान की तरफ बढ़ गई। विहान को उस लड़के ने मुंह पर लंच मारा था जिससे वो नीचे जा गिरा। ठीक उसी वक्त रश्मि वहां पहुंच गई। उसने उसका कॉलर पकड़कर उसको थोड़ा ऊपर उठाया और एक जोरदार पंच उसके मुंह पर दे मारा। फिर गुस्से से चीखी, क्या किया है तूने आरवी के साथ? इतना कहकर उसने एक और पंच उसके मुंह पर दे मारा। बता मुझे, क्या किया है तूने उसके साथ? अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रश्मि बेहद गुस्से में लग रही थी। विहान ने पलटकर उसको मारना चाहा, पर रश्मि ने उसके पेट पर जोरदार लात दे मारा। वो एक बार फिर नीचे जा गिरा। रश्मि गुस्से में उसको मारने लगी। लड़के ने उसकी बात सुनी तो भागकर आरवी के पास आया, उसकी सांसें चेक की, फिर भागकर रश्मि के पास आया। रश्मि विहान को बुरी तरह मार रही थी। उसने उठाकर उसको डेस्क की तरफ फेंक दिया जिससे उसके सर पर डेस्क के किनारे से चोट लग गई। वो जमीन पर जा गिरा, पर रश्मि का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। वो फिर उस पर बरस पड़ी। लड़के ने आकर उसको रोकना चाहा, पर वो उसकी सुन ही नहीं रही थी। उसके कानों में आरवी की चीख गूंज रही थी और आंखों के सामने वो नज़ारा घूम रहा था जब विहान आरवी के करीब था और उसकी बेहोशी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। जब उसने उस लड़के की नहीं सुनी तो लड़के ने उसकी कमर थामते हुए उसको विहान से दूर किया और चिल्लाकर बोला, होश में आओ रश्मि, मर जाएगा वो। आज मैं उसे जान से मार ही दूंगी। बहुत परेशान किया हुआ इस हरामखोर ने। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई आरू के साथ जबरदस्ती करने की? ऐसे हैवानों को मार ही देना चाहिए, वरना वो अपनी हवस की आग में किसी न किसी मासूम लड़की को झुलसा ही देंगे। रश्मि गुस्से से गरजी और खुद को छुड़ाकर वापस विहान की तरफ जाने लगी, पर उस लड़के ने उसकी कलाई पकड़ते हुए कहा, रश्मि अभी तुम्हें आरवी को देखना चाहिए। उसके सर पर चोट लगी है, बेहोश है वो। आरवी का नाम आते ही रश्मि के भाव कुछ कोमल हो गए। वो आरवी की तरफ बढ़ने लगी, फिर विहान के पास आ गई। उसका कॉलर पकड़कर उसको ऊपर उठाया और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब करके दांत पीसते हुए और निगाहों से निगाहें मिलाते हुए बोली, इस बार तुझे जिंदा छोड़ रही हूँ,
अगर दोबारा आरू को छूने क्या उसकी तरफ अपनी गंदी नजरों से देखने की भी कोशिश की तो हाथ पैर तोड़ कर रख दूंगी। अगर तू मुझे आरू के आसपास भी दिखा तो अटेम्प्ट टू रेप के केस में अंदर करवा दूंगी, समझा? और इसे सिर्फ धमकी समझने की भूल कभी मत करियो, वरना सारी जिंदगी पछताएगा। इतना कहकर उसने गुस्से में उसको एक और पंच दे मारा और आरू के पास पहुंच गई। अक्षत ने उसकी मदद की और दोनों आरवी को लेकर वहां से बाहर निकल गए। रश्मि अब वर्तमान में लौट आई और आगे बताना शुरू किया। अक्षत ने उस दिन मेरी मदद की थी तुझे घर तक लेकर जाने में। मैं नहीं चाहती थी कि आंटी परेशान हो, इसलिए उनसे झूठ कह दिया। जब अगले दिन तूने फोन किया तो मुझे पता चला कि तुझे कल का कुछ भी याद नहीं। अगर मैं तुझे वो सब बताती तो तू भी बेवजह परेशान हो जाती, इसलिए मैं तुझसे भी वही झूठ बोल दिया जो आंटी से कहा था। मैं सब जानती थी, उस दिन उसने कोशिश जरूर की थी पर कामयाब नहीं हुआ था। पता नहीं कौन सी फोटो दिखाई उसने तुझे और तूने उसकी सारी बकवास को सच मान लिया, इसलिए उसने तुझे धमकी दी ताकि तू मुझे कुछ ना बताए और मैं उसका खेल ना खत्म कर दूं। जानता था वो अगर मुझे उसकी बात खटिया हरकत की भनक भी लगी तो मैं इस बार उसको छोड़ूंगी नहीं और वो कभी तुझे नहीं हासिल कर पाएगा, इसलिए उसने पूरा खेल रचा और तू बेवकूफों की तरह उसका मोहरा बन गई। उसका सारा टॉर्चर अकेले सहती रही। इतनी बार पूछा मैंने तुझसे कि क्यों उस कमीने से शादी करने के लिए तैयार हो गई, पर तुझे तो मेरी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। बेवकूफ लड़की, खुद सोचती ना, अगर उसने सच में वो कर लिया होता तो तुझसे शादी करने को तैयार ही क्यों होता? शादी वाले दिन तेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश ही क्यों करता? पर तू तो जैसे अपनी अकले बेचकर खा गई थी जो तुझे कुछ नजर ही नहीं आ रहा था और चल पड़ी थी उससे शादी करके अपनी जिंदगी तबाह करने। वो तो अच्छा हुआ जो मैंने तेरी मेहंदी पर ऐस लिख दिया और उसको पता चल गया। उसके बाद उसकी जगह जीजू से तेरी शादी हो गई।
उसने दो बार तेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर एक बार मैंने उसका गेम खराब कर दिया था तो दूसरी बार जीजू ने उसको कुत्ते की तरह मारकर भगा दिया था। अगर मुझे पहले पता होता कि उसने तुझे झूठी कहानी बताकर शादी के लिए मजबूर किया है तो जीजू ने तो उसको छोड़ दिया था, पर मैं उसकी जान ले लेती। उस कमीने के वजह से तूने इतना कुछ सहा अकेले, पर गलती तेरी भी है। उस हरामखोर की बातों पर विश्वास करने की क्या जरूरत थी? एक बार मुझसे बात करती तो तुझे इतना दर्द, इतनी तकलीफ नहीं सहनी पड़ती और ना ही उसको बर्दाश्त करना पड़ता। पर मिस आरवी, जो बहुत इंटेलिजेंट बनती है, उसका दिमाग तो तब घास चढ़ने गया था, इसलिए उसकी बातों में आकर उससे शादी करने चल पड़ी थी। रश्मि ने आरवी को उस शाम की सारी सच्चाई बताई, फिर अपना सर पकड़कर बैठ गई और गुस्से से आरवी को घूरने लगी। बेचारी आरवी परेशान सी उसको देखने लगी। उसको तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि उसके साथ क्या से क्या हो गया। सारी सच्चाई उसके लिए किसी शौक से कम नहीं था। कुछ देर वो परेशान सी उसको देखती, फिर मुंह बिगाड़ते हुए बोली, क्या है, तब से बस घूरे जा रही है? क्या गलत किया है मैंने? उसने सबूत दिखाए थे मुझे, फिर तूने मुझसे झूठ कहा था कि मैं तुझे वॉशरूम में बेहोश मिली, तो मुझे उसकी बात सच लगने लगी। डर गई थी मैं, दिमाग काम नहीं कर रहा था मेरा कि क्या करूं। अपने साथ साथ माँ को भी मैं उस दलदल में खींच लेती, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। उसकी बातों के हिसाब से तो वैसे भी वो मेरे साथ सब कर चुका था, तो अगर शादी करना चाह रहा था तो कुछ गलत नहीं था। मुझे नहीं पता था कि उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा ताकि मुझसे शादी करके मुझे हासिल कर सके। इसमें जितनी गलती मेरी है उतनी तेरी भी है। अगर तूने पहले मुझे सब बता दिया होता तो वो कभी मुझे बेवकूफ नहीं बना पाता, और वो सब होता ही नहीं। मैंने वही किया था जो तब मुझे ठीक लगा था, इसलिए मुझे ताने मारना बंद कर। आरवी मुंह सुझाते हुए उसको देखने लगी तो रश्मि ने उसको अपने गले से लगा लिया। चल ठीक है, मेरी भी गलती थी, पर आगे से ना ही मैं तुझसे कुछ छुपाऊंगी ना ही तू मुझसे कुछ छुपाएगी। कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम सब एक दूसरे से शेयर करेंगे। देखा ना, इस बार पहली बार कुछ छुपाया हमने एक दूसरे से, और क्या होने वाला था उसकी वजह से। सच तेरे महादेव ने बाल बाल बचा लिया। मैं तो जब सोचती भी हूं ना कि तेरी शादी उस कमीने से होती तो मेरी जान सूख जाती है। तुझे नहीं पता कितनी परेशान थी मैं उन दिनों। हर पल मैंने बस यही दुआ मांगी थी कि कैसे भी करके तेरी शादी उस हरामजादे से ना हो, और आखिरकार महादेव ने मेरी सुन ही ली। एन वक्त पर उन्होंने चमत्कार कर दिया और उस विहान की जगह जीजू से तेरी शादी हो गई। पर फ्यूचर से ऐसी कोई सिचुएशन हम आने ही नहीं देंगे। कोई भी बात हो एक दूसरे को बताएंगे। हाँ, पता है कितना मुश्किल वक्त था वो मेरे लिए। मैं तुझसे या माँ से कुछ कह भी नहीं पा रही थी। कितना मुश्किल था मेरे लिए खुद को उससे शादी करने के लिए तैयार करना। हर पल खुद से ही एक जंग लड़ रही थी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो उसकी बातों को सच मान बैठी और तुझे कुछ नहीं बताया। आगे से मैं तुझसे कुछ नहीं छुपाऊंगी, आरवी ने उससे अलग होते हुए कहा। दोनों ने एक दूसरे से वादा किया। अब जाकर उनको सुकून मिला। रश्मि ने दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर की, फिर आरवी को देखकर गंभीरता से बोली, अब तो तू खुश है? विहान ने तेरे साथ कुछ नहीं किया था, जीजू को तूने कोई धोखा नहीं दिया, तू आज भी पवित्र है, अनछुई है।
अब तुझे जीजू को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। विहान को तेरे साथ जबरदस्ती करते उन्होंने खुद देखा था और देखा था ना क्या हाल किया था उसका। अगर उन्हें पहले वाली बात पता भी चल जाती है तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब तुझे डरने की जरूरत नहीं है, वो तुम्हें ना ही अपनी जिंदगी से और ना ही घर से बाहर निकालेंगे। तू उनके साथ अपने रिश्ते को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभा सकती है। तू उनके लायक है इसीलिए उनके पास है। इसीलिए अब इन बकवास बातों पर ध्यान देने की जगह अपने और जीजू के रिश्ते पर ध्यान दे। अब तुझे ये सब सोचकर परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं है। वो बोल ही रही थी कि वेटर कॉफी रखकर चला गया। दोनों दोस्त अब टेंशन फ्री होकर कॉफी पीने लगे। सच जानने के बाद आरवी बहुत रिलैक्स फील कर रही थी। आखिर उसके दिल से इतना बड़ा बोझ उतर गया था, वरना वो कल रात से हर पल खुद को दोषी मान ही थी। डर रही थी पर अब उसको डरने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था। रश्मि भी खुश थी, आखिर आज आरवी ने वो राज उसके सामने जाहिर कर दिया था जो वो कब से जानना चाहती थी। विहान की हरकत पर उसको गुस्सा भी आ रहा था, पर आरवी की शादी उससे नहीं हुई, शान से हुई। उसकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई, इस बात की खुशी भी थी। दोनों ही लेट हो गई थी तो एक दूसरे को बाय कर वो अपने अपने रास्ते को निकल गए। टू बी कंटिन्यूड।